يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. देखो भाई, जो कल का मौजू है, कल जो बात चल रही थी, उसे अर्ज़ करूं आप हजरात की खिदमत में। लेकिन उससे पहले एक बात ये अर्ज़ करने को जी चाहता है कि यूरोप में और अमेरिका में दीनी मजलिसों में बैठने का जो तरीक़ा है, उस तरीक़े के मुताबिक लोग नहीं बैठते। सब बिखरे हुए मोती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको दीनी बात कैसे सुनाऊं। जिनको दीनी मजलिस में कैसे बैठना है, वो बैठने का तरीका ही जिनको नहीं मालूम, उनको दीन की बात सुनाएं कैसे। एक शख्स माजूर है, वो नमाज भी बैठकर पढ़ता है, ठीक है, वो जहां चाहे बैठे, जिस तरह बैठे। लेकिन जो मेरे जैसे तवाना तनुमंद हैं, मैं इंडिया से टोरंटो में आपको दीनी बात सुनाने के लिए आया, और वो हजरत दीवार के पास से मेरे पास नहीं आ सकते, तो मैं उनको क्या दीनी बात सुनाऊंगा और क्या फ़ायदा होगा उन्हें? कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ लो, इसे हर चीज़ के आदाब हैं। आप नमाज में पूरी बिल्डिंग में बिखरे खड़े हैं, दो यहाँ दो यहाँ दो वहाँ दो यहाँ, तो जमात हुई, जो जमात का ढोंग हुआ। भाई, जमात से नमाज पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके के मुताबिक मिलकर जमकर सब बनाकर कंधे से कंधा लगाकर खड़े होगे तो जमात होगी, वरना जमात नहीं कहलाएगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है। यूरोप का भी हाल यही है, अमेरिका का भी हाल यही है। भाई, मैंने मान लिया कि तुम्हारे जेब गर्म है, मैंने मान लिया, तो जेब के गर्म होने से दिल पर क्या असर पड़ता है? आपने दिल को क्यों खराब करते हो? ये जेब जो है ना, ये दिल के ऊपर है, जब ये गर्म होती है तो अंदर दिल खराब हो जाता है। मेरे भाइयों, इसे समझो, इस हकीकत को समझो। ये जेब तुम बनाते हो, दिल के ऊपर बनाते हो, और इसमें जब पैसा आता है और ये गर्म होता है तो तुम्हारा दिल अंदर से खराब हो जाता है। मेरे भाइयों, दोनों बीच में तीन परत हैं, एक कपड़े की परत है, एक बनिया कुर्ते की परत है, एक बनियान की परत है, एक चमड़े की और गोश्त की परत है। इतना पैसे का असर दिल में क्यों घुसने देते हो? क्या है, हम तो मालदार, हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, ये क्या बात हुई? अभी तुम मालदार हो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत फरमाए, खूब तुम्हारा माल बढ़े घट हो, लेकिन अपने दिल को मत खराब करो। दिल को दिल रखो, दिन का जो कदर करनी चाहिए उस कदर के मुताबिक मेरे भाइयों बैठोगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बात कहना भी आप लोगों से किसी सारे के बस में नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ आप हजरा से, ये बात भी आप हजरा से हर आदमी नहीं कह सकता, तुम्हारे पैसे से डरता है। इसलिए मैं खरी खरी कह रहा हूँ, तुम्हें चाहे खोटी लगे तो भी कह रहा हूँ, अच्छी लगे तो भी कह रहा हूँ। कोई तो कहने वाला मिलना चाहिए जो कहे। इसलिए अगर मेरी इस बात से आप नाराज होंगे तो मेरी बला से, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर मेरी इस बात से आप हजरात नाराज होंगे मेरी बला से, मेरा क्या बिगड़ेगा? कल नहीं आओगे, किसका नुकसान होगा? तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा? मगर जो बात अर्ज करता हूं उसे दिल के कान से सुनो, दिमाग से सोचो, सही हो कबूल करो, सही न हो तो दीवार के पीछे फेंक दो, लेकिन सही बात हो उसे कबूल करना चाहिए। अगर कबूल न किया जाए तो फायदा क्या। बात यह चल रही थी कि तमाम इंसान अहदे अलस्त में पैदा हो चुके हैं। अहदे अलस्त किसको कहते हैं? वो ही आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जो उनकी सारी औलाद निकाली गई थी और अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई थी और फिर इम्तिहान लिया था, अलस्तु बेरब्बिकुम, क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा परवरदिगार, इसी का नाम है अहदे अलस्त। जब अल्लाह ने पूछा था इंसानों से क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, वो जो जमाना है उस जमाने में सारे इंसान पैदा हो गए। फिर वो सब इंसान आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया वहां रखे गई हैं, सब रूहें वहां रखी गई। फिर जब वहां से इस दुनिया में आने का वक्त होता है तो पहले इस जमीन से इंसान की बॉडी बनती है। ये बॉडी जानते हो क्या है? ये कार है जिसमें कार वाला बैठकर सफर करता है। आपकी कार होती है, उस कार में आप बैठ करके ड्राइव करके इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, तो आप और हैं कार और है। तो ये आपके लिए कार तैयार की, आप तो वो हैं जो वहां आलम अरवा में हैं और जिसमें जिन्होंने अल्लाह के सवाल का जवाब दिया है, भला क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप वो हैं, रूह वो है आपकी। इस दुनिया में आएंगे तो दुनिया में कार चाहिए आपको जिसमें आप बैठ करके पूरी जिंदगी घूमेंगे फिरेंगे। ये कार माँ के पेट में तैयार होती है मिट्टी से। हर इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, यानी उसके जिस्म को मिट्टी से बनाया। कहाँ वो कार तैयार होती है? दो दुनियाओं के बीच में। ये जो हमारी दुनिया जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये आलम अजसाद है, वर्ल्ड ऑफ बॉडी। वो था वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। उसके बीच में, वो बीच की जो होता है उसके लिए अरबी में लफ्ज है बरज़ख, और इसी बरज़ख लफ्ज का अंग्रेजी बना है बैरियर। देखो अंग्रेजी जुबान जो है वो चंदे की जुबान है। अंग्रेजी जुबान असल कोई जुबान नहीं है, कोई बेसिकली बुनियादी जुबान अंग्रेजी नहीं है, वो चंदा करके बनी है। जैसे उर्दू जुबान कोई जुबान नहीं, वो भी चंदे की जुबान है। उसमें इतने फीसद फारसी के लफ्ज होंगे, इतने फीसद हिंद संस्कृत के लफ्ज होंगे, इतने फीसद अरबी के लफ्ज होंगे। यूं सब मुख्तलिफ जुबानों का चंदा करके उर्दू वजूद में आई है। उर्दू कोई जुबान नहीं है। इसी तरह से अंग्रेजी कोई जुबान नहीं, वो मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज इकट्ठा होकर एक नई जुबान वजूद में आई। और अंग्रेजी डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने लिखा है कि ये लफ्ज कौन सी जुबान का है, कौन सी जुबान में से आया है। अरबी के बहुत लफ्ज हैं, अंग्रेजी में अरबी के बहुत लफ्ज हैं। जमीन को क्या कहते हैं आप? अर्थ। ये अरबी लफ्ज है, अरबी लफ्ज अर्दुन, वही अर्दुन यही अर्थ बना है। प्रोनाउंसिएशन बदला उसका, एक जुबान से लफ्ज दूसरी जुबान में जाता है तो प्रोनाउंसिएशन बदलता है। और ये जो जहां आपके दो रोड मिलते हैं आप क्या कहते हैं? मर्ज। ये भी अरबी का लफ्ज है, मरज अल बहरैन अल तकियान, ये अरबी से लफ्ज इस आए हुए मर्ज लफ्ज। इसी तरीके पर ये दो रोडों के बीच में जो बैरियर होता है ये वो बरज़ख लफ्ज है अरबी का, जो अंग्रेजी में आया है उसका प्रोनाउंसिएशन बदला है। दो चीजें हैं उनके बीच में एक आड़ है जो दोनों को मिलने नहीं देती, वो बरज़ख अरबी में कहलाता है, अंग्रेजी में उसी को बैरियर कहते हैं। एक शख्स था, उसने कहा अंग्रेजी में उर्दू हमारा भी हिस्सा है, उर्दू से उर्दू भी अंग्रेजी में है, अंग्रेजी उर्दू के अल्फाज भी अंग्रेजी में है। लोगों ने पूछा कैसे, उसने कहा छड़ी को क्या कहते हैं, छड़ी लेकर आप चलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, स्टिक। कहा ये इसे टेक फिर अच्छा, ये जो माँ के पेट की जिंदगी है ये बरज़ख की जिंदगी है, दो दुनियाओं के बीच की जिंदगी है, आलम अरवाह और ये आलम अजसाद बॉडी का आलम। ये अकरब कौन सी दुनिया से है, माँ के पेट की जो जिंदगी है वो अकरब किस से है, अकरब हमारी इस दुनिया से, आलम अरवाह से अकरब नहीं है, इधर अकरब है। इसलिए हमारी इस दुनिया के तमाम असरात माँ के पेट में जो बच्चा है उस बच्चे पर असरात पड़ते हैं। माँ हलाल खाएगी, बच्चे पर उसके असरात पड़ेंगे, हमल के ज़माने में हराम खाएगी, उसके असरात पड़ेंगे बच्चे पर, माँ हमल के ज़माने में गुलाब के फूल खाएगी, बच्चा गोरा पैदा होगा। एक तो वो है जिनकी नस्ल ही गोरी है, उनको छोड़ो उनकी बात नहीं है, हम जो कलर्ड कहलाते हैं, माँ अगर हमल के ज़माने में गुलाब के फूल और गुलकंद मिलाकर खाएगी, बच्चा गोरा पैदा होगा। माँ अगर खूबसूरत कपड़े पहनेगी, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, माँ अगर काले कपड़े पहनती रहेगी, बच्चा काला पैदा होगा। हत्ता के हमल के ज़माने में माँ जो कुछ बोलेगी पढ़ेगी उसका भी बच्चे पर असर पड़ता है। दो औरतों का तजर्बा कर लो, एक औरत हामिला है और हाफिज है या हाफिज नहीं है, हमल के ज़माने में ख़ास तौर पर जब बच्चे में रूह पड़ जाए, उसके बाद बच्चा पैदा होने तक बकसरत कुरान पढ़े और इतना ज़ोर से पढ़े कि उस पढ़ने की आवाज़ पेट का बच्चा सुने। एक दूसरी औरत को ले लो, वो पूरे हमल के ज़माने में बराए नाम कुरान पढ़े, जब ये दो बच्चे बड़े होकर 5-6 साल के बाद मकतब में बैठेंगे और हिफ्ज करने बैठेंगे, ये बच्चा फटाफट हिफ्ज करेगा, ये देर से करेगा, जिसको तजर्बा करना हो करके देख लो। ये बच्चा जिसकी माँ ने हमल के ज़माने में अक्सर कुरान पढ़ा है और दिल में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इतना ज़ोर से माँ पढ़े कि बच्चा सुने पेट का, तो जब हम ये हिफ्ज करने का वक्त आएगा फटाफट हिफ्ज करेगा। और ये दूसरा बच्चा मार खा खा कर थक जाएगा और हिफ्ज नहीं कर पाएगा, दे परेशान हो जाएगा। क्यों, ये बच्चा जब से इसका वजूद हो गया, रूह पड़ गई, माहौल इर्द गिर्द की चीजों को कैच करता है, बोलने के काबिल नहीं है मगर सब चीजें उसकी तख्ती के अंदर आती हैं। बच्चा पैदा होकर 2 साल के बाद कौन सी ज़ुबान बोलता है, वही ज़ुबान बोलता है जिस ज़ुबान बोलने वालों के बीच में उसने 2 साल गुजारे हैं। अंग्रेज़ों का बच्चा 2 साल के बाद अंग्रेज़ी बोलना शुरू करता, गुजराती बोलना शुरू नहीं करता, और गुजरातियों का बच्चा 2 साल के बाद गुजराती बोलना शुरू करता, अरबी बोलना शुरू नहीं करता। क्यों, उसका जो दिमाग की तख्ती है उसमें जो चारों तरफ अल्फाज बोले जा रहे हैं वो कैच होते हैं, और जब वोकैबुलरी इतनी हो जाती है तब अल्लाह ताला जुबान के नीचे जो पट्टे हैं वो पहले कमज़ोर होते हैं, वो उठते ही नहीं, जुबान खींचते ही नहीं है, तो क्या बोले। अब 2 साल में वो पट्टे कमज़ोर हो, जो वो ताकतवर हुए, अब वो उठा करके जुबान को इधर उधर लगाएंगे तो वो जो दिमाग में वर्ड भरे हुए हैं वो अल्फाज उसके मुँह पर आने शुरू होंगे, जो जुबान उसकी तख्ती में है ही नहीं वो जुबान कहाँ से बोलेगा। डेढ़ साल और 2 साल के दरमियान में बच्चे को बोलना चाहिए, 1.5 साल और 2 साल के बीच में बच्चे को बोलना चाहिए, और अगर 2 साल हो गए और बच्चा बोलना शुरू नहीं करता या काफ़ी अल्फाज नहीं बोलता, इसका मतलब उसकी ज़ुबान के नीचे के पट्टे कमज़ोर हैं। वो पट्टे नहीं हैं, उल्लू के पट्टे हैं। लिहाजा उसका इलाज ये है कि एक बादाम भिगा दो, एक दाना फकत, एक बादाम भिगा दो, जब वो गर्म पानी में भिगाओ, जब वो उस पर से गर्मी छिलका उतर जाए तो उसे पत्थर पर घिसो और एक बादाम में एक पाव सियाह मिर्च, सियाह मिर्च का एक दाना, उसका चार हिस्से करके एक चौथाई वो उसके अंदर घिसो उंगली से, वो सियाह मिर्च भी घिसो, एक बादाम घिसो और उसमें एक पाव सियाह मिर्च के एक दाने का पाव हिस्सा घिसो और घिस करके ये रखो और बच्चा जब भी सोए इसमें से थोड़ा सा लेकर उसकी जुबान के नीचे लगा दो, फिर उठेगा, फिर दोबारा जब सोएगा फिर थोड़ा सा उसमें से लगा दो, फिर उठेगा फिर सोएगा, चार पांच मर्तबा 24 घंटे में वो एक बादाम जो आपने पीसी है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर उसकी जुबान के नीचे लगा देना है, बस ये उसका इलाज है, ये उसके पट्ठों को मजबूत करेगा और बच्चा बोलना शुरू करेगा। तो चूंकि बच्चे को इस दुनिया में आना है तो प्रिपरेशन यहां का जरूरी है, तैयार यहां के लिए करना है, बच्चे को तैयार यहां के लिए करना है। आलम अरवा से खिसक आया, अब उससे तो रब्ता खत्म हो गया, वहां से रूह जब पेट में बच्चे में आ गई आलम अरवा से रब्ता खत्म हो गया, अब इसको प्रेपर करना है, तैयार करना है अगले वर्ल्ड के लिए। लिहाजा यहाँ के सारे असरात पड़ते हैं, यहाँ की ग़िज़ा उस बच्चे की ग़िज़ा बनती है, माँ जो ग़िज़ा खाती है वो खून बनकर ग़िज़ा में पहुँचती है, माँ जो कुछ सोचती है उसका बच्चे पर असर पड़ता है, माँ जो कुछ खाती है उसका बच्चे पर असर पड़ता है। फिर चार महीने के बाद में बच्चा इस दुनिया में आ गया, जब यहाँ के काबिल हो गए, देखो पहले, अब ऐसा तो होता है कि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाए, 8 महीने में पैदा हो जाए, 10 महीने 7 महीने में पैदा हो जाए, ऐसा होता है। और बच्चा अगर जल्दी पैदा हो गया तो डिब्बा है उसमें हॉस्पिटल वाले रखते हैं, लेकिन 9 महीने से जायद माँ के पेट में रहे अब नहीं रहता, पहले रहता था। क्यों? पहले वो हॉस्पिटल वाले डिब्बे नहीं थे, क्या नाम है, इनक्यूबेटर पहले नहीं थे। और बच्चा जरूरी नहीं है कि 9 साल के अंदर इस काबिल, 9 महीने में इस काबिल हो जाए कि दुनिया की आबो हवा बर्दाश्त कर सके, ये कोई जरूरी नहीं है। तो पहले अल्लाह अपनी कुदरत से बच्चे को माँ के पेट में रखते थे, कहते हैं कि इमाम मालिक अलैहिर रहमा 4 साल माँ के पेट में रहे। हजरत इमाम मालिक अलैहिर रहमा के हालात में लिखा है कि 4 साल माँ के पेट में रहे, और 2 साल तक माँ के पेट में रहने का तो आम मसला है कि मुद्दत हमल ज्यादा से ज्यादा 2 साल है, बच्चा 2 साल पेट में रहता है, कब रहता है? 9 महीने पूरे हो गए, बच्चा अभी दुनिया की आबो हवा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, तो अल्लाह ताला हमल की मुद्दत बढ़ा देते हैं, 10 महीने में पैदा होगा, 11 महीने में पैदा होगा, 15 महीने में पैदा होगा, 20 महीने में पैदा होगा। और अब लोगों ने जब इंतजाम निकाल लिया, डिब्बे बना लिए, अल्लाह मैंने कह लो संभालो तुम, 9 महीने के बाद सौंप दिया कि लो संभालो, रखो अपने डिब्बे में। और जब तक इंसानों के पास डिब्बे नहीं थे, अल्लाह मियां डिब्बे में रखते थे। फिर बच्चा दुनिया में आता है तो तदरीजी तौर पर बच्चा होता है, फिर खड़ा होकर चलता है, फिर जवान बनता है, फिर अधेड़ बनता है, फिर बूढ़ा बनता है, फिर सिग्नल डाउन होता है। और जैसा नातवा पैदा हुआ था ऐसा ही नातवा हो जाता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह बहुत से बंदों को ऐसी निकम्मी उम्र तक पहुंचने से पहले ही उठा लेते हैं, ये अल्लाह का करम है। लेकिन बाज़ बंदों को अल्लाह ताला निकम्मी उम्र तक पहुंचा देते हैं, इतनी निकम्मी उम्र जितनी बच्चे का मोहताज होता है, इतना मोहताज होकर रह जाता है, इतनी उम्र तक पहुंचा देते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये रूह जो असल इंसान था, जो आलम अहद अलस्त में पैदा हुआ था, जो वहां से बॉडी में मुंतकिल हुआ और पूरी बॉडी बढ़ती रही, इंसान नहीं बढ़ा। जब बच्चा पैदा हुआ आपने नाम रखा अब्दुल रहमान, यही अब्दुल रहमान है। 7 साल के बाद जब पट्ठा हो गया, जवानी से पहले पट्ठा होता है, तो अब भी अब्दुल रहमान है। फिर जवान हो गया तो अभी अब्दुल रहमान है, फिर अधेड़ हो गया तो अभी अब्दुल रहमान है, बूढ़ा हो गया तो अभी अब्दुल रहमान है। मालूम अब्दुल रहमान है। और ये बढ़ा कौन? अब्दुल रहमान का बदन बढ़ा। अब्दुल रहमान तो वही अब्दुल रहमान है, उसका बदन बढ़ता चला गया। फिर जब एक वक्त आता है तो रूह बदन में से, जैसे फरिश्ते ने लाकर डाली थी, फरिश्ता आता है और बदन में से रूह निकाल कर ले जाता है। माँ के पेट में हदीस में कि फरिश्ता आलम अरवा से रूह लाकर बॉडी में फूंकता है, डालता है। जब वक्त पूरा हो जाता है तो फरिश्ता ही फिर आता है और आकर के उस बॉडी में से ले जाता है। देखो ऐसा फरिश्ता एक नहीं, बेशुमार फरिश्ते। और जो फरिश्ता बॉडी में से रूह निकालने के लिए आता है वो मलकुल मौत कहलाता है, मौत का फरिश्ता। लोग ये समझते हैं कि मौत का फरिश्ता एक है, एक नहीं है। बहुत बड़े जो मौत के फरिश्ते हैं, हजरत अजाजील अलैहिस्सलाम, वो हैं बहुत बड़े मौत के फरिश्ते हैं, लेकिन वो अकेले सारी रूहें वसूल नहीं करते हैं, उनके मातहत बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं, वो सब मलकुल मौत हैं, मौत का फरिश्ता। मलकुल मौत का माने मौत का फरिश्ता, जो आकर रूह निकाल जाए वो मौत का फरिश्ता। ऐसा ही एक मसला दूसरा है, शैतान। शैतान मेरे भाइयों एक नहीं है, शैतान भी बेशुमार हैं। और वो शैतान बड़ा खबीस, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसका नाम अजाजील है, वो शैतान अकबर है, सबका गुरु घंटाल है। बाकी शैतान उसके मातहत शैतान बेहिसाब बेहिसे हैं। और सिर्फ शैतान जिन्नात ही में नहीं होते हैं, शैतान इंसानों में भी होते हैं। कुरान करीम में है, शयातीनुल इंस वल जिन यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल ग़ुरूरा। तो शयातीन इंसानों में भी होते हैं, जिन्नात में भी शयातीन है, और वो जो शैतान अकबर है वो जिन्नात में है। एक सवाल का जवाब सुनाऊं, बिदती जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं कि सब चीज़ें हुजूर को अल्लाह ने बता दी, अल्लाह ने बता दी सब बातें, जितनी बातें अल्लाह को मालूम है अल्लाह ने वो सब बातें हुजूर को बता दी, फिर बिदती पूछते हैं हमसे अमेरिका में जो बुराइयां हो रही शैतान जानता है? नहीं जानता है। अफ्रीका में जो हो रही हैं वो जानता है। एशिया में जो हो रही है जी जानता है। चाइना में जो हो रही वो जानता है। ले ये देवबंदी अजीब व गरीब है कि शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज़्यादा मानते हैं, कि सारी दुनिया में जो कुछ बुराइयां होती शैतान को तो सब पता है और कहते हैं हुजूर नहीं जानते। ये एक सवाल है उनका, उसका जवाब सुनाऊं तुम्हें? वो एक हमसे एक सवाल करते हैं, पूछेंगे अमेरिका में जो बुराइयां हो रही शैतान को मालूम है? नहीं। शैतान वहां टांग अड़ाता है? नहीं अड़ाता। अड़ाता है अफ्रीका में? जी। एशिया में? जी। चाइना में? जी। रूसिया में? जी। सब जगह शैतान को सब मालूम है और सब जगह टांग अड़ा सकता है। और जब इनसे कहें कि हुजूर हाजिर नाजिर हैं, सब बातें जानते हैं, तो ये देवबंदी इनकार करते हैं, अल्लाह के अलावा हाजिर नाजिर कोई नहीं। शैतान को तो हाजिर नाजिर मानते हैं और हुजूर को मानने के लिए तैयार नहीं। उसका जवाब ये है कि अमेरिका का शैतान और है, अफ्रीका का दूसरा है, चाइना का और है, एशिया का और है, और अमेरिका के हर हर फर्द के साथ लगा हुआ शैतान अलग है, अफ्रीका के हर हर फर्द के साथ लगा हुआ शैतान अलग है, और ये सारी बातें जो शैतान जिसके साथ लगा हुआ है वो ही जानता है। वो जो शैतान अकबर है उनका गुरु घंटाल है वो सब नहीं जानता। दलील दलील वो हदीस शरीफ याद करो कि शैतान अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाता है और पानी पर तख्त बिछाता है। पानी पर तख्त बिछाता है का मतलब ये है कि वो शयातीन इतने हैं कि खुश्की में उनके गैदरिंग की कोई जगह नहीं, और समंदर सारा खाली पड़ा है तो वो समंदर पर तख्त बिछा कर अपनी जलसा बुलाता है, कॉन्फ्रेंस बुलाता है, फिर रिपोर्टें लेता है, यहाँ तू क्या करके आया, तू सुनाता मैंने ये किया ये किया, तो कहता है परे हट कुछ नहीं किया तूने, दूसरे को बुलाता है, तीसरे को बुलाता है, सबसे रिपोर्टें लेता है, यहाँ तक के एक से बुलाता एक को बुलाकर पूछता तूने क्या किया, तो उसने कहा मैं एक कपल के साथ लगा रहा है और उनके दरमियान में लड़ाई करवाई और तलाक की नौबत आई और तलाक दिलवाई, वहां तक मैंने पीछा नहीं छोड़ा। तो शैतान उसे गले लगाता कि हाँ पट्टे तूने बहुत अच्छा काम किया। ये सब रिवायत सुनी नहीं सुनी कहीं, ये रिवायत तो सुनी होगी, मशहूर रिवायत है। इससे मालूम हुआ कोई शैतान अकबर जो गुरु घंटाल है उसे कुछ नहीं मालूम, वो तो रिपोर्टें लेता है सबसे, जब रिपोर्टें लेता तब उसे पता चलता है। और शैतान जानता है का मतलब ये कि अमेरिका में जिस पर्सन के साथ जो शैतान उनकी अथॉरिटी ने लगा रखा है वो जानता है। वो तो जानते हैं, हुकूमत भी CID लगाती है, तो जो CID जिसके साथ लगाएगी वो CID का आदमी तो उसके अहवाल जानेगा। ऐसे शयातीन की अथॉरिटी ने भी हर हर शख्स के साथ, और एक एक शैतान नहीं लगाया, हर हर शख्स के साथ कई कई शैतान लगा रखे हैं। हदीस शरीफ में है इन्ना लिल वुदू ए शैतान युकाल लहू वलहान, उनकी अथॉरिटी ने हर मोमिन की तहारत में गड़बड़ करवाने के लिए एक शैतान मुकर्रर किया है। सिर्फ यही काम उसका है कि वुजू करे उसमें शक पैदा करो, गुसल करे उसमें शक पैदा करो, तहारत में शक पैदा करो, और उसका नाम है वलहान, सरगश्तगी, गुजराती में कहते घनचक्कर, उसका नाम ही है घनचक्कर। वो हर मोमिन के साथ लगा रहता है और क्या काम करता है, जहां वो पाकी करेगा, वुजू करेगा, गड़बड़ करेगा, तहारत गुसल करेगा, गड़बड़ करेगा, वुजू में तहारत में शक पैदा करेगा। तो एक एक आदमी के साथ कई कई शैतान लगा रखे हैं। तो ये जो शैतान लगा रहे ये शैतान जानता है, और लोग ऐसा समझते हैं कि वो शैतान अकबर जो उनका गुरु घंटाल है वो सारी दुनिया के हर हर इंसान के अहवाल जानता है। ये गलत है, अगर वो अहवाल जानता होता तो उसे कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्टें लेने की जरूरत क्या थी। लिहाजा वो जो सवाल है बिदतियों का, गैर के बरेलियों का, वो सवाल गलत है। शैतान हर हर सब कुछ जानता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़ा शैतान शैतान अकबर सब कुछ जानता है, उसको तो रिपोर्टें लेनी पड़ती है तब उसे पता चलता है। बहरहाल नाम इंसान उस रूह का है, फिर जब वक्त आता है तो वही फरिश्ता, मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता का मतलब समझा रहा कि वो जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं वो हरेक की मौत वो रूह वसूल करने नहीं आते, वो तो अपने बड़े हैं, उनकी एक अथॉरिटी है, उसके मातहत बेशुमार फरिश्ते काम कर रहे हैं और वो आकर रूहें वसूल करते हैं। इसके पास जो फरिश्ता आया वो उसका मलकुल मौत है, इसके पास जो आया वो इसका मलकुल मौत है, भैंस के पास आया उसका मलकुल मौत है, चूहे के पास आया उसका मलकुल मौत है, हरेक का मौत, मौत का फरिश्ता अलग है। लतीफ़ा, अभी तुम बकरा ज़बा करोगे तो जल्दी मर जाएगा, बकरा ईद के दिनों में जल्दी नहीं मरेगा, तजर्बा करो, अभी बकरा ज़बा करो, एक मिनट में दो मिनट मर जाएगा, और बकरा ईद में ज़बा करो 15 मिनट हुए मरता ही नहीं, क्यों? वो फरिश्ते कम पड़े, वो लाइन में है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कई इधर उधर निमट कर आएंगे तभी तो वो हासिल करेंगे। सुभान। दूसरा लतीफा, बकरा कसाई जबा करेगा जल्दी मर जाएगा, और हम जबा करेंगे जल्दी नहीं मरेगा। क्यों? कसाईयों का फरिश्तों से कॉन्ट्रैक्ट है तो जल्दी आ जाते। तो वो फरिश्ता जो रूह डाल गया था, ऐसा ही वही फरिश्ता हो या कोई दूसरा फरिश्ता है, वो आता है और बदन में से रूह निकाल कर ले गया। और अभी जो पड़ा रह गया ये क्या है? ये है लाश। अरबी में लफ्ज है, अरबी में जो अरबी जानते हैं वो समझ सकते हैं कि ये पूरा वर्ड है लाश है उन नथिंग। ये जो चारपाई पर पड़ा है ये नथिंग है, लाश है उन लाश है। और अब्दुल रहमान के तो गुजरी गया, गुजराती में कहते गुजरी गया। ये जानते हो ये क्या लफ्ज है? ये फारसी लफ्ज है गुजर, और गया उसका तर्जमा है गुजिस्तन, गुजरना, उससे गुजर। ये फारसी है माजी और उसका ये तर्जमा है गुजर गया, और असल वर्ड और तर्जमा मिला करके इस्तेमाल उर्दू में करते हैं। उर्दू में क्या क्या कहते हैं? मर गया, मर गया। ये अरबी का लफ्ज है मर्रा, और गया उसका तर्जमा है, और दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे गुजर गया ये दोनों लफ्ज और उसका तर्जमा है, ऐसे मर गया, मर्रा और गया। और उर्दू अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास अवे। पास अवे के माने आगे बढ़ गया, कहीं गया। तो ये जो रहा वो क्या है? ये है कुछ नहीं, दाश है उन, वो तो पास अवे। रात को आदमी का इंतकाल होता है, अभी डेड बॉडी चारपाई पर पड़ी है, किसी का फोन आता है या दरवाजे पर कोई दरवाजा खटखटाता है, फुलां साहब, तो अंदर से एक नौजवान मुंह लटकाए निकलता है, कहता है वो तो रात को गुजर गए। हालांकि अभी लाश घर में पड़ी है, मगर लोग कहते हैं वो तो गुजर गए। मालूम है फुलां साहब जिनका नाम था वो तो गुजर गए, गए, और ये तो उनकी कार है जो रह गई। ये कार कहां से बनी थी? मिट्टी से। चुनांचे हम जाकर ये मिट्टी के हवाले करते हैं, ये कहकर मिन्हा खलकनाकुम, मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया था, यानी तुम्हारी बॉडी को मिट्टी से पैदा किया था। वफीहा नुईदुकुम, और उसी मिट्टी में हम तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं? उस बॉडी को। खुलासा, अब्दुल रहमान तो गए, लेकिन ये जो मिट्टी में रिटर्न कर दिया है ये हमेशा के लिए नहीं किया है। वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर हम तुम्हें इसी मिट्टी में से एक मर्तबा और निकालेंगे। ये जो डेड बॉडी मिट्टी के हवाले की गई है, ये मिट्टी में से फिर एक मर्तबा और ये डेड बॉडी निकाली जाएगी, और डेड बॉडी निकाल करके वो जिंदा जिस्म हो जाएगा। और रूह कहाँ गई? इधर भी एक आलम अरवा है उधर गई, जैसा एक आलम अरवा वहां था ऐसा एक आलम अरवा यहां है, इधर गई। उस आलम अरवा में नहीं गई, वो तो आलम अरवा पीछे गया, एक आगे आलम अरवा है, रूह वहां गई और बॉडी मिट्टी के हवाले कर दी गई, इसलिए वो मिट्टी से बनाई गई थी। ये एक दूसरा बारियर आया, बरजख आया, यही बरजख है, यही आलम कब्र है, यही कब्र है, और ये हमारी दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड के बीच का बारियर है। और ये बारियर ये भी इसी दुनिया का सप्लीमेंट्री है, आखिरत का नहीं है। वो जो माँ के पेट का जो बरजख था वो भी दुनिया का था, क्यों? बच्चे को दुनिया में लाना है। और ये इसी दुनिया का हिस्सा क्यों है? इसलिए कि इस बारियर में से, इस बरजख में से फिर कयामत के दिन लौटकर हमें इसी दुनिया में फिर आना है। अरबी में इसको क्या कहते हैं? अरबी में इसको कहते हैं माद, और माद अरबी लफ्ज है, उर्दू में उसके माना है रेवस। तो हम ये जो आगे बढ़ गए हैं, आलम कब्र में पहुंच गए, उस वहां से हमें फिर रेवस आना है, इसी दुनिया में रेवस आना है और फिर इसी दुनिया में कयामत कायम होगी। इसी दुनिया का जो ये चक्कर चल रहा है डे एंड नाइट शबो रोज जो चल रहे हैं, ये शबो रोज का सिलसिला रुकेगा और इस दुनिया का जो लास्ट डे आएगा वो 50,000 ईयर का आएगा, वो एक दिन होगा, उसमें डे एंड नाइट कुछ नहीं, ये चक्कर डे एंड नाइट का रुक जाएगा और वो जो सूरज यूं डूबता था वो वापस लौटेगा, मगरिब से सूरज निकलेगा और ये डे एंड नाइट का चक्कर रुक जाएगा और आखिर अल यौमुल आखिर इस दुनिया का लास्ट डे शुरू होगा और वो कितना लंबा है आज के एतवार से, वो 50,000 ईयर का है, ये भी कुरान में है। تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ فرمایا کہ یہ سارا نظام اللہ کی طرف چڑھ جائے گا، ایک ایسا دن جو 50,000 ایئر کا ہے، جب وہ دن آئے گا تو یہ دنیا کا سارا نظام اللہ کی طرف چڑھ جائے گا، فرشتے بھی سب چڑھ جائیں گے اور ساری روحیں بھی چڑھ جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو بہت دن باقی ہیں اس لاسٹ ڈے کے آنے میں، اللہ فرماتے ہیں لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اس کے آنے میں دیر نہیں ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے۔ تو یہ جو الیوم الاخر ہے، اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے، یہی یوم القیامہ ہے، مقررہ ٹائم ہے، اس دنیا کے فنش ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے مقررہ ٹائم ہے۔ پھر اس دنیا کی تمام چیزیں آخرت میں منتقل ہو جائیں گی اور وہ ورلڈ ہمیشہ چلے گا۔ تو چونکہ سب کو اس زمین میں اسی دنیا میں ریوس آنا ہے، واپس آنا ہے، اس لیے یہ جو عالم قبر ہے، یہ جو برزخ ہے، یہ ہماری اسی دنیا کا زمینہ ہے۔ لیکن اس دنیا میں پہنچ کر آخرت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مہین پردہ، مہین معنی بہت باریک، ایک مہین پردہ اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں رہ جاتا ہے اور آخرت کے احکام وہاں جھلکنے لگتے ہیں۔ حدیث میں اس کو یوں سمجھایا کہ قبر میں جب سوال جواب ہو جاتے ہیں اور اچھا بندہ ہوتا ہے تو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہوائیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے اور ادھر سے شرارے آنے ہو لگتے ہیں۔ شرارہ جو چولہے میں سے انگیٹھیاں پھٹ دے کر اڑتا ہے، وہ شرارہ آتا ہے، اور قرآن میں ہے کہ ایک ایک شرارہ اونٹ جتنا بڑا بڑا ہوگا۔ یہ وہاں کے احکام جھلک رہے ہیں۔ ابھی جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا، یہ سب وہاں کے احکام جھلک رہے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اسی دنیا میں لوٹنا ہے اور لوٹ کر کے حساب کتاب ہو کر پھر دو دنیاؤں کے بیچ میں ایک برج ہے، پل صراط۔ یہ صراط عربی لفظ ہے، پل اس کا ترجمہ ہے، اور دونوں ملا کر کے ایک ورڈ بنایا گیا ہے۔ ایسا اردو میں بہت بنتا ہے کہ فارسی سے یا عربی سے ایک لفظ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اصل اور ترجمہ دونوں ملا کر ایک لفظ بنا کر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پل صراط رکھا جائے گا دو ورلڈ کے بیچ میں، اور یہاں سے پھر سارے اس پل پر سے گزر کر اگلی دنیا میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ جب سارا یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے اور یہ ورلڈ خالی ہو گیا تو الیوم الاخر لاسٹ ڈے ختم ہو گیا اور یہ دنیا فنش، اور وہ دنیا اب ہمیشہ چلتی رہے گی۔ یہ سب حساب کتاب اس زمین پر اسی دنیا میں کیوں ہونا ہے؟ ہماری یہاں اردو میں ایک مثل ہے، قصے زمیں بر سر زمیں، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، جہاں کا معاملہ، ایک کھیت کا جھگڑا ہے और पंज को बुलाया कि भाई जरा हमारे दो भाइयों में झगड़ा है, जरा फैसला कर दो खेत का। तो पंज दो सब भाइयों को लेकर खेत में जाएंगे और वहीं खड़े होकर फैसला करेंगे, देख भाई यूं लकीर इतना तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा। घर बैठ करके खेत का झगड़ा नहीं निपटाएंगे। किस्से है जमीन भर सरे जमीन, जमीन का किस्सा जमीन ही पर तय होता है। तो इंसान ने अच्छे बुरे अमल यहाँ किए हैं, लिहाजा इसके फैसले इसी जमीन पर होने हैं। ये कहता है मैंने बहुत नमाजें पढ़ी हैं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बता भाई कौन सी जमीन से पूछेंगे, जमीन तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। इसका मतलब तू झूठा है, अगर तूने नमाजें जमीन पर पढ़ी होती तो जमीन तेरे लिए गवाही देती। हदीसों में यह मजमून है कि जहां आदमी ने नमाजें पढ़ी वो जमीन कल क़यामत को गवाही देगी। इसीलिए कहते हैं कि जमात ख़त्म होने के बाद में जहाँ फ़र्ज पड़े हैं वहीं नफले मत पढ़ो, जगह बदलो। क्यों? गवाह बहुत सारे बने, फ़र्ज यहाँ पड़े, सुन्नतें वहाँ पड़ी, ये भी गवाही देगी, वो भी गवाही देगी। फिर हमारा तालिब इलम कहता है कि फिर तो नफलों में भी एक दो रकात वहाँ पढ़ो, दो यहाँ पढ़ो, दो यहाँ पढ़ो, दो यहाँ पढ़ो, पूरी मस्जिद में घूमते रहो, दो दो रकातें पढ़ते रहो। उसका जवाब ये है कि यही एक हिकमत नहीं है, एक दूसरी भी हिकमत है। वो दूसरी हिकमत ये है कि अगर जहाँ फ़र्ज पड़े गए हैं सब लोग वहीं सुन्नतें शुरू करेंगे तो आने वाले को धोखा होगा, वो ये समझेगा जमात हो रही, वो आकर के इख्तिदा करेगा। और जब लोग बिखर गए तो आने वाला फ़ौरन समझ जाएगा भाई जमात ख़त्म हो गई। ये भी हिकमत है कि जहाँ फ़र्ज पड़े वहाँ नफले मत पढ़ो, वहाँ से हटकर सुन्नतें पढ़ो ताकि आने वाले को धोखा ना हो और वो आकर जमात में इख्तिदा करके शामिल ना हो जाए। वो भी एक हिकमत है, ये भी एक हिकमत है। ये हिकमत नफलों में नहीं पाई जाती कि दो रकातें वहाँ पड़ी नफल की, फिर हटकर दो यहाँ पड़ी, दो यहाँ पड़ी, दो यहाँ पड़ी, यहाँ वो हिकमत नहीं पाई जाती। इसलिए अगर अलग अलग जब में इत्तिफाकन अलग अलग जगह पर नफलें पढ़ो तो हर जगह गवाही देगी, बाकी ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। क्यों? इसमें कौन सा किसी आने वाले को क्या धोखा होने वाला है। तो फ़र्ज़ों में ये मसला इसलिए ताकि आने वाले को धोखा ना हो। और ख़ास तौर पर इमाम को तो अपनी जगह से हट ही जाना चाहिए ताकि आने वाले को कोई धोखा ही ना हो। गर्ज़ ये मज़ामीन अहादीस शरीफ़ा में आए कि ज़मीन के ये खित्ते जहाँ बुराइयाँ की हैं वो गवाही देगी, जहाँ अच्छाइयाँ की हैं वो गवाही देंगी। अब अगर ये हिसाब किताब किसी दूसरी दुनिया में होगा तो गवाह तो यहाँ रह गए और हिसाब किताब वहाँ हो रहा है। इसलिए आलम कब्र में जाने के बाद क़यामत के दिन सबको फिर रेवस आना है यहाँ, और यहाँ हिसाब होना है क्योंकि सारे विटनेस यहाँ हैं। और विटनेस के बगैर क्या हिसाब फैसले होंगे? विटनेस तो चाहिए फैसले में। और अगर जहाँ तक पहुँचे वहाँ से अगली दुनिया में मुंतकिल कर दिए और वहाँ फिर फैसले होंगे तो विटनेस के बगैर कैसे फैसले होंगे? तो माँ के पेट की ज़िंदगी इस दुनिया का हिस्सा है क्योंकि उसको यहाँ आना है, और कब्र की ज़िंदगी वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है क्योंकि कब्र से फिर वापस यहीं आना है और यहाँ आकर सब हिसाबों किताब होना है। लेकिन जब तक कब्र की जिंदगी में रहता है, आखिरत से कॉन्टैक्ट हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि हदीस में फरमाया गया कि बीच में एक पर्दा रह जाता है महीन बारीक, और वहाँ के अहकाम यहाँ झलकते हैं और जन्नत की तरफ और जहन्नम की तरफ खिड़कियाँ खुल जाती हैं, इतना करीब चला गया। ये जो जन्नत की जो वहाँ आखिरत के अहकाम झलकते हैं मेरे भाइयों, यही कब्र की का अजाब और कब्र की राहत है। कब्र में सिर्फ अजाब ही अजाब नहीं होता, बुरे को अजाब होता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको अजाब क्यों होने लगा? उनको राहतें पहुँचती हैं कब्र में। जब लोगों से कहें कब्र का अजाब, तो बहुत से जो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी समझ में नहीं आता कि मर गए, डेड बॉडी हो गई, काय का अजाब? अरे डेड बॉडी तो अब्दुल रहमान है ही नहीं, डेड बॉडी तो अब्दुल रहमान है ही नहीं। अब्दुल रहमान जिसका नाम था वो हकीकत तो लम्य तगैर है, अनचेंजेबल है, वो तो जब से पैदा हुआ वहां से माँ के पेट में बॉडी में आया, वहां से निकल कर आलम अरवाह में गया, वो तो बेहाल ही है। जिस हकीकत का नाम अब्दुल रहमान है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें अगर ये कहा जाए कि कब्र में राहतें भी मिलती हैं, लड्डू भी मिलते हैं, तो कहता हाँ हाँ समझ में आ गया, अब उसकी समझ में आ जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये मसला भी समझने का है। और बाद में कुरान में दिखो कहाँ है अजाब कब्र का जिक्र। कल उनको हम कुरान में भी दिखा देंगे कि कुरान में भी अजाब कब्र का जिक्र है। और कब्र में सिर्फ अजाब नहीं होता, कब्र में अल्लाह के नेक बंदों को राहतें भी मिलती हैं। और बेशुमार हदीसों में उसके तज़किरे आते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों को कब्र में किस किस तरीके से उनका एहसास होता है, रिस्पेक्ट होता है। ये सब मजामिन भी हदीस में आए हैं। ये जो अजाब कब्र है या कब्र की राहत है, उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत ये है कि कब्र में इतना आखिरत से इतना करीब पहुँच गया कि वहाँ के अहकाम झलकने लगे, जन्नत के अहकाम झलकने लगे, ये कब्र की राहतें हैं। जहन्नम के अजाब झलकने लगा, ये कब्र का अजाब है। और इसी हाल में उधर से दुनिया खाली होती होती आ रही है, इधर भर रही है। एक वक्त आएगा कि आलम अरवा एम्प्टी, जितने वहां थी रूहें वो सब इस दुनिया में आ गई। फिर इस दुनिया में से एक बारगी सब खत्म होंगे, सूर फूंका जाएगा और सूर फूंके जाने से एक बारगी सब खत्म हो जाएंगे और सब आलम अरवा में चले जाएंगे, आलम कब्र में चले जाएंगे। फिर 40 साल के बाद में दोबारा सूर फूंका जाएगा और इस जमीन पर अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएंगे। और इस मिट्टी में हमारे जिस्म के जो अज्जा इसी मिट्टी में है, अल्लाह का हुक्म होगा कि हर जिस्म के अज्जा इकट्ठा हो करके और फिर हमारी बॉडियां जमीन से उगेंगी। और जैसे बरसात होती है और घास जमीन में से निकलती है, इस तरह से बॉडियां सब उगेंगी। और तमाम बॉडियां जब तैयार हो जाएंगी तो फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। और पहले सूर फूंकने में और दूसरे सूर फूंकने के दरमियान में 40 साल की मुद्दत गुजरेगी। पहली सूर फूंकते ही सब खत्म, रूहें चली गई आलम कब्र में, यहाँ बॉडियां मिट्टी में खत्म। फिर उसके बाद बारिश बरसेगी, बॉडियां उगेंगी, सब तैयार होंगी। जब दूसरी मर्तबा 40 साल के बाद सूर फूकेगी तो वो जो तमाम रूहें अगले आलम कब्र में इकट्ठा हुई हैं वो फिर वहां से वापस होंगी, रिटर्न आएंगी। और हर रूह अपनी बॉडी में आकर घुस जाएगी। और रूह जब बॉडी में आ गई तो बॉडी जिंदा हो गई। यही नशअत सानिया है, यही मरने के बाद की दोबारा जिंदगी। लिहाजा बात यहाँ तक ले जाकर छोड़ देते हैं। कल ये समझेंगे कि कब्र में जो अजाब है और राहत है, सिर्फ अजाब मत कहो, कब्र में अजाब है बुरों के लिए और राहतें हैं अच्छों के लिए। ये जो हकीकत है ये कुरान करीम के अंदर है और अकल के मुताबिक है, और उसको कल समझाएंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। गर्म पानी चलता है।